प्रवचन सार, प्रवचन सभा, लेक्चर नंबर 669। ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्तारं, नमो सिद्धारं, नमो आयलियारं, नमो वज्रायारं, नमो लोये सौवसाहुनं, सुर असुर नरपति वन्दने प्रविनष्टघाति कर्मणे प्रणमन करो धर्मकर्ता तीर्थ श्रीमहावीर ने वरिशेष तीर्थंकर ने सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान द्रगचारित्र तपवीर्या चरण संयुक्त ने ते सर्वने साते तथा प्रत्येक ने वंदु हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने यह नमस्करण करिए निते गणधरने अध्यापको ने सर्व साधु समूह ने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुक्त पवित्र आश्रम पानिने प्राप्ति करो साम्यने जेनापि शिव प्राप्ति वने। आचार्य श्री कुंकुम भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं और उसके आठवें पुस्तक के पृष्ठ संख्या 88 पर हम आ गए। 88। देखो यहाँ बात क्या चल रही थी, लास्ट पेज पर मैंने आत्मा तो आनंद स्वरूप है, गुण तो आनंद स्वरूप है परंतु पर्याय में दुख है, ये भी बात बताई थी कि जितनी अभी समय दर्शन होने पर जितनी वितरागता है उतनी निराकुलता है और जितना राग है उतना दुख भी है। ये बात कल हो रही थी। देखो हम पढ़ते भी हैं 88 पेज पर सेकंड लाइन। वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। किसमें द्वैत हो गया? राग में। पुण्य और पाप द्वैत ने दोपना है। राग के दो विभाग किए, एक शुभ राग एक अशुभ राग। आहा, शुभ राग भी आत्मा की पर्याय में है और आत्मा का कार्य है। अशुभ राग अपनी पर्याय में है तो उसका कार्य है, पर के साथ कोई संबंध नहीं। यानी आत्मा ही स्वयं ही पुण्य और पाप करता है, वो कर्म के कारण करता है, कर्म कराता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो कहते पर के साथ कोई संबंध नहीं, पर वस्तु अपने में त्रिकाल है नहीं। कर्म, शरीर, स्त्री, कुटुंब, परिवार, पैसा अपने द्रव्य गुण में तो है ही नहीं, लेकिन अपने पर्याय में भी ये चीज नहीं है। उसके पर्याय में रागादि द्वेषादि है। आहा, इस प्रकार जो अपनी पर्याय में जाने तो वह द्रव्य गुण का आश्रय लेकर उसे टाले। पहले जिसने पर्याय में वो राग द्वेष अपने से होते ही जान लिया है तो उसका लक्ष्य छोड़कर वो द्रव्यगुण का आश्रय लेता है तो वो वैसे पर्याय उत्पन्न नहीं होते, तो उसको टाला ऐसा हम कहेंगे। परंतु पर को ग्रहण ही किया नहीं तो त्यागे कैसे? समझ में आया? लोग तो माने कि पर का त्याग करे तो त्यागी हो गया, लेकिन अंदर मिथ्यात्व है, राग है, उसका त्याग स्वरूप की दृष्टि करके तो त्याग हुआ नहीं। क्या कहते हैं? पर वस्तु का त्याग को त्याग मानता है और ये त्यागी है ऐसा कहता है, परंतु हम अभी अंदर मिथ्यात्व और राग द्वेष पड़े हैं, तो स्वरूप के आश्रय से उसका त्याग नहीं किया है तो वो त्याग हुआ ही नहीं उसको बिल्कुल। फिर से पढ़ते ये वाक्य, लेकिन अंदर मिथ्यात्व है, राग है, उसका त्याग कैसा करेंगे? तो स्वरूप की दृष्टि करके,
ये करके
करके एक शब्द पहले, स्वरूप की दृष्टि करके, कर और के जोड़ देना, मैंने स्वरूप की दृष्टि करके तो त्याग हुआ नहीं, स्वरूप की दृष्टि करेंगे तो राग द्वेष का त्याग हो जाएगा, परंतु वो तो उसने किया नहीं है, वह राग उसमें है, राग का परिणमन उसके पर्याय में है, वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। देखा, राग के दो विभाग है, शुभ राग अशुभ राग, दया दान व्रत भक्ति आदि के परिणाम शुभ है। परिणाम कहा, क्रिया नहीं कहा, हम तो क्रिया में वो पुण्य पाप मानते हैं, है ना, कि हमने पूजा की, क्या किया, तो हमने अष्टद्रव्य यहाँ से यहाँ चढ़ाया, क्योंकि एक थाली से दूसरे थाली में डालने से क्या फायदा हुआ? नहीं, वो खाली वो द्रव्य नहीं यहाँ से वहाँ किया, उसके पीछे उस हम चढ़ाते समय हम भगवान की गुणगान कर रहे थे, भगवान के गुणों को याद कर रहे थे, है ना, तो वो शुभ राग है। तो दया दान व्रत भक्ति आदि के परिणाम शुभ है, और हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना पाप राग है। वेदांत तो ऐसा ही कहता है कि आत्मा बिल्कुल शुद्ध ही है, वो पर्याय को मानते ही नहीं है, और पर्याय है ही नहीं कहेंगे, शुद्ध ही है तो दुख का है कहे, ख्याल में, फिर मोक्ष का उपाय भी कैसा करेगा? अरे सुन तो सही, शुद्ध ही तो संसार किसका, शुद्ध ही हो तो संसार किसका? अगर वो शुद्ध ही मानते हैं तो संसार भी पर्याय में, मोक्ष भी पर्याय में है। शुद्ध है तो फिर राग का टालना तो रहता नहीं। आहा, वही वही यानी जो पुण्य पाप का भाव यानी राग होता है, वह आत्मा का जो पर्याय में कार्य है वही पुण्य पाप रूप द्वैत है, यानी राग जो है वो आत्मा का कार्य है, और वो दो रूप से है, पुण्य और पाप रूप से, पुण्य पाप रूप द्वैत है, शुभ राग और अशुभ राग पर्याय में है। हाँ, समझ में आया? कर्म से नहीं होता, कर्म निमित्त है तो व्यवहार नहीं से कहेंगे। देखो कथन में होगा, परंतु हमें सही मानना चाहिए, सही जानना चाहिए। निश्चय से तो अपना परिणाम अपने से है, स्व आश्रय निश्चय पराश्रित व्यवहार, अपने में पुण्य पाप का भाव पर्याय में है तो निश्चय से है, वो अपनी पर्याय है ना, तो वो अपनी पर्याय है तो अपना है, उसको अपना कार्य कहना, ये निश्चय है, भले अशुद्ध निश्चय से है लेकिन निश्चय से है। आत्मा राग परिणाम का ही करता है, भाषा देखो, पहले द्वैत लिया, राग है वह अपना कार्य ऐसा कहा, फिर राग के दो विभाग किए, शुभ और अशुभ, पुण्य पाप दो। आत्मा राग परिणाम का ही करता है, आहा, समझ में आया? अनादि से राग परिणाम उसमें है, उसका आत्मा करता है, उसका कर्म करता है नहीं, यानी कर्म कौन सा? जड़ कर्म उसका करता नहीं है, कर्म राग द्वेष को कराने वाला नहीं है, परद्रव्य करता है नहीं, समझ में आया? और हम तो कहते हैं गुस्सा आता है, वैसे तो मैं बहुत शांत हूँ, सामने वालों को खोटा करता है काम तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा होता है कि नहीं? बच्चे सुनते तो मैं शांत हूँ, बच्चे नहीं सुनते तो बहुत गुस्सा आता है। क्या बोलती
है?
देखो एक और एकदम ऐसा कहना कि आत्मा निर्मलानंद शुद्ध चैतन्य घन है, पर्याय मात्र अभूतार्थ है, ये किस अपेक्षा से बताया है? समय सार में बताया ना, इसको कहते दृष्टि अपेक्षा से। फिर से पढ़ती हूँ, एक और एकदम ऐसा कहना, एक और ने अभी समय सारा जहाँ दृष्टि का कथन आता है, दृष्टि के विषय का, वहाँ क्या कहते हैं? आत्मा निर्मलानंद शुद्ध चैतन्य घन है, पर्याय मात्र अभूतार्थ है। अभूतार्थ ने है नहीं, कैसा है नहीं है, वो नहीं दिख रही, वो दृष्टि में नहीं दिख रही, सर्वथा है नहीं, ऐसा नहीं है, उस नये में वो नहीं दिखेगी। निर्मल पर्याय भी अभूतार्थ असत्यार्थ है। किस अपेक्षा से कहते हैं? जिस त्रिकाली भूतार्थ सच्चिदानंद प्रभु पूर्णानंद के नाथ की दृष्टि कराने को, ये दृष्टि की बात आई ना, मुख्य करके निश्चय कहा, और पर्याय को गौण करके, देखो पर्याय भी वहां है, द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो पर्याय है, द्रव्य गुण सब है, परंतु हमें दृष्टि किसकी करनी है? द्रव्य की, कायम रहने वाला जो त्रिकाली स्वभाव भाव है उसकी, तो तब पर्याय को गौण करके हमने है ही नहीं कह दिया। कल परसों बात आई थी ना, उसको डुबो दिया, डुबो दिया ने क्या गौण कर दिया। देखते व्यवहार कहकर नहीं है कहा, नहीं है ऐसा नहीं, क्या बताया? देखो एक ग्यारहवीं गाथा जो समय सार है उसके प्रवचन में तो गुरुदेव ने कितनी बार कहा है कि पर्याय है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, गौण करके व्यवहार कहकर उसको नहीं है कह दिया, तभी उसको अभूतार्थ कह दिया। सूक्ष्म बात है भाई, अनंत काल से उसे भूल रह जाती है, मिथ्या तो शल्य रह गया है, यह बात करते हैं। पाठ तो देखो, अरहंत सर्वज्ञ ने यति अने जो गणधर यत्ना में तैयार है, चार ज्ञान और 14 पूर्व की रचना जिन्होंने क्षण में की, एक अंतर्मुहूर्त में रचना कर देते, उन गणधरों को ऐसा कहा है। यति शब्द है ना, पाठ है ना, यति उसमें नहीं है, है ना, तीसरा पद है अरहंते ही जदीनम। पहला पद कहा कि जीवाणम निश्चयन निदिट्ठो, निदिट्ठो ने उन्होंने बताया, निर्दिष्ट अर्थात निश्चय से भगवान ने कहा है। भगवान ने राग दया दान काम क्रोध पुण्य पाप भाव तेरी पर्याय में है ऐसा निश्चय से कहा है। देखो ये पहले ज्ञान की अपेक्षा से बराबर इसको समझना चाहिए, और बाद में वो दृष्टि में लेना है द्रव्य को। ये पहले ही द्रव्य की बात सुनते हैं बच्चे, स्पेशली जो नए सीखने वाले होते हैं ना, तो कहते है ही नहीं कह के राग को जीव में है ही नहीं कह देते। अरे है ही नहीं, अपेक्षा से कहा है। किस अपेक्षा से? दृष्टि के विषय में वो नहीं है, पर द्रव्य में से कहाँ गए? पर्याय है कि नहीं है? सर्वथा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसका सर्वथा निषेध करेंगे तो खोटी मान्यता हो जाएगी। हाँ, बाद में कहा कि अरहंते ही जदीनम, कहा है किसे? कि गणधरों को भी ऐसा कहा है। गणधरों भी शास्त्र की रचना करे उसमें यह रचना आती है, आहा हा है अंदर, अरहंते ही जदीनम यति, यति यानी ये लौकिक जति नहीं, यत्ना जिन्होंने आत्मा के आनंद के सागर की यत्ना की, चार ज्ञान 14 पूर्व की पर्याय प्रकट की है, हा हा वे मंत्री है, तीर्थंकर के मंत्री है, तीर्थंकर के दीवान है। टीका में है भाई, यति का अर्थ है ना, संस्कृत टीका में है, देखो इसमें जैसे नाचार्य देव की टीका में है, निश्चय नयन निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का अर्थ है कथित, यानी बताया, कही कर्तृभूत ही, किसने बताया है? अरहंत हिम, अरहत भी, यानी अरहंतों ने बताया, तो अरहंत कौन है? निर्दोषी परमात्मा भी, यानी निर्दोषी परमात्मा जो अरहंत भगवान है उन्होंने बताया है। केशाम, किसको बताया? जदीनम, जितेंद्रियत्वेन शुद्धात्म स्वरूपे यत्न पराणाम गणधर देवादि यतीनाम, यानी जितेंद्रिय तो होने से शुद्धात्म स्वरूप में जो यत्न पराणाम, यत्न परायण जो है उसमें जो बारंबार प्रयत्न पूर्वक उसी में लगे रहते हैं, उसी में शुद्धात्मा के अनुभव करते हैं। ऐसे गणधर देवादि आदि में अन्य भी को मुनियों को लेना, यति नाम। हाँ, क्या गाथा है। गणधर जो जितेंद्रिय है, यति है, कषाय को जीता है, जीता नहीं जीता है, जी दीर्घ चाहिए, कषाय को जीता है, वे यति है। ये लौकिक में साधु होते हैं वह नहीं। हाँ, यहाँ तो उन जिन्होंने हुआ, जिन्होंने ऊपर जैसे जीता वाला जिए ना, वैसा जिन्होंने चाहिए, उसका इकार रह गया है। आशा समझ में आया। यहाँ तो जिन्होंने आत्मा आनंद के नाथ की यतना की, यतना ही नहीं, उसने रक्षण किया, जतना कहे ना, यतना अंदर में रक्षा की है, रागादि अपने में है ऐसा जानकर, पहले क्या किया, जानकर, पहले ही निषेध नहीं किया है, वो है ऐसा पहले स्वीकार, क्योंकि है ना उस आत्मा के पर्याय में है, आत्मा ने वो परिणमन स्वयं किया है, तो कहते ऐसा जानकर उसे हे जाना। ये हेय श्रद्धान में होता है, ये जानने में तो ज्ञान का ज्ञेय होता है, ज्ञान में तो है ऐसा नक्की करेंगे, परंतु श्रद्धा में उसको नहीं देखना है, किसको देखना है, स्वभाव को देखना है, तो उसका उसके प्रति लक्ष्य छोड़ देना है, तो हमने हेय किया उसको कहेंगे। तो कहते जानकर उसे हेय जाना। समझ में आया। त्रिलोकनाथ, सर्वज्ञ, जिनेश्वर, परमेश्वर, परमात्मा गणधरों को ऐसा कहते थे, गणधरों को कहते थे। तो गणधर ने ओम ध्वनि सुनी, अर्थ गणधर विचारे, रचि आगम उपदेश, भविक जीव संशय निवारे। किसने बताया ये लाइन, कहाँ की है? लक्ष्मी, आपको याद होगा, बनारसी दास
नाटक
समय। गणधरों ने यह रचना की, कुनकुंदाचार्य देव ने भी यह रचना की। समझ में आया। 90 पेज 90। आहा, राग कर्म से होता है, कर्म से होता है, मेरे से नहीं, ऐसा अज्ञानी कहता है। लेकिन कर्म तो परद्रव्य है, परद्रव्य का तो अपने पर्याय में अत्यंत अभाव है, कर्म तो अपने पर्याय को छूते भी नहीं। राग है वह कर्म की पर्याय को छूता नहीं, यानी कर्म अपने पर्याय को नहीं छूता है, अपनी यानी जीव की, और राग है वह कर्म की पर्याय को छूता नहीं, वह तो परद्रव्य है। समझ में आया। आहा, अपने पर्याय में छूते हैं। समय सार की तीसरी गाथा में आए ना, प्रत्येक पदार्थ अपने जो गुण पर्याय है उन्हें चूमते हैं, छूते हैं, परद्रव्य को नहीं। यानी प्रत्येक दो द्रव्यों में तो अत्यंत अभाव है ना, तो कहते वो अपने गुण पर्यायों को छूते हैं, चूमते हैं, परद्रव्य को नहीं। तो अपने पर्याय राग है उसे चूमते हैं, उसका ज्ञान कराया है, उसमें से ऐसे ही निकाल दे कि राग कर्म का है, कर्म कहाँ, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे ही निकाल दे, वो नीरस्व चाहिए। तूने, वो तू भी दीर्घ चाहिए। तूने कर्म को ग्रहण किया ही नहीं तो कर्म छोड़ना ऐसा भी नहीं है। मिला? परंतु राग को तो तूने, ये तूने ठीक करना, तू दीर्घ। राग को तो तूने तेरी पर्याय में ग्रहण किया है, तो तुझे उसे छोड़ना पड़ेगा, द्रव्य की दृष्टि करके उसे छोड़ना है। कैसे छोड़ेगा? नहीं, अभी राग ज्यादा है ना, राग कम करो, उसको कम करना नहीं, उसको छोड़ना नहीं कहते, द्रव्य की दृष्टि करने से वो वैसा राग नहीं उत्पन्न होगा तो हमने उसको छोड़ा कहेंगे, उसका लक्ष्य छोड़ना है। उसका लक्ष्य छोड़ेंगे तो द्रव्य का लक्ष्य होगा ना, या द्रव्य का लक्ष्य करेंगे तो उसका लक्ष्य छूट जाएगा, उसके बिना तो नहीं छूटेगा। हम राग को ही देखते हैं और राग को कम करने की कोशिश करते तो कब कम होगा। और बाह्य में जो थोड़ा बहुत गुस्सा आता था वो थोड़ा ठंडा हो गया, वैसे भी ठंडा होने वाला है क्योंकि कितने टाइम तक टिकेगा, अंतर्मुहूर्त तक टिकेगा, तो वो क्या सोचता है, देखो हमने कम किया कि नहीं। या क्या कहा, द्रव्य की दृष्टि करके उसे छोड़ना है। पर्याय में है लेकिन द्रव्य में नहीं है, क्योंकि पर्याय में राग है तो पर्याय को राग को जानते हैं तो है वहाँ पर, तभी कम कैसे होगा। तो द्रव्य में तो राग है ही नहीं है, तो द्रव्य का लक्ष्य करने से फिर वो राग छूट जाएगा। भगवान सच्चिदानंद प्रभु पूर्णानंद का नाथ, उसकी दृष्टि करके राग छोड़ना, लेकिन तेरी पर्याय में है उसे छोड़ना, तेरे में नहीं है उसे छोड़ना कहाँ आया। ये बात पहले भी आई थी कभी कि स्वभाव में तो राग है ही नहीं है, तो जब हमने स्वभाव को मैं कहा तो उस मैं में राग नहीं है, तो राग छोड़ने की बात कहाँ आई। पर्याय में है तो हमने छोड़ा कहेंगे, तो पहले पर्याय में है ये स्वीकार करना पड़ेगा। केवल स्वभाव को ही मैं कहते हैं तो उसमें तो राग तो है ही नहीं है, तो राग छोड़ने का भी प्रसंग नहीं है, परंतु पर्याय में है ना, तभी तो दुखी भी है, नहीं तो वो वही मान्यता होगी वेदांत जैसी। हाँ क्या मैं पूर्णानंद का नाथ, उसकी दृष्टि करके राग छोड़ना, लेकिन तेरी पर्याय में है उसे छोड़ना, तेरे में नहीं है तो उसे छोड़ना कहाँ आया। सूक्ष्म है भाई यह बात, वीतराग के अलावा कहीं नहीं है बापू। अरे आहाहा, कुनकुंदाचार्य देव पुकार करते हैं, अरहंतों ने, त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर ने, यतियों को, गणधर आदि संतों को यह बात की है, और तू दीर्घ यह मान ले कि राग कर्म से होता है, तू भगवान की वाणी झूठी करते हो, गणधरों ने सुना उसे झूठी करते हो, यानी तुमने वो जो भगवान ने बताया, गणधर ने जो सुनाया और बताया उसको तुम झूठी कह रहे हो, गणधरों ने शास्त्र रचे उन्हें तुम झूठे करते हो। आहा हा, आत्मा राग परिणाम का ही करता ही क्यों लिया, क्योंकि वो कर्म का करता नहीं है, कौन से पुद्गल का करता नहीं है, ये बताने के लिए राग का ही करता है। ओहो हो, एक एक पंक्ति में कितना भरा है, उसी का ग्रहण करने वाला है। देखा, उसने राग ग्रहण किया है, कर्म ग्रहण नहीं किया है। कर्म तो जड़ है, स्त्री कुटुंब परिवार शरीर को आत्मा ने ग्रहण किया नहीं। पानी ग्रहण कहते हैं ना, शादी करते, ये पानी ग्रहण करते क्या होता है, हाथ में पानी नहीं हाथ को ही पानी कहते हैं। देखो पानी में नी दीर्घ आता है, नी जल पीने का पानी, पानी में नी रस्व है, उसका अर्थ होता है हाथ, हस्त मिलाप, पानी ग्रहण करते है हस्त मिलाप।
आपने किया कि नहीं किया
पानी नहीं लिया
पानी
उन्होंने ऐसे हाथ में पानी लेना ऐसा लगा उनको इसीलिए मैंने पूछा चक्रपाणी नाम सुना है, चक्रपाणी नाम सुना नहीं, चक्रधर चक्रपाणी, यानी हाथ में जिनको चक्र धारण करते हैं उनको चक्रपाणी कहते हैं, अर्जुन का नाम है ना चक्रपाणी, चक्रधर सुना है ना, ऐसे चक्रपाणी जिनके हाथ में चक्र है उसको चक्रपाणी कहते हैं। ये पानी में नी रस्व है देखो, और हम जो पानी पीते हैं वो नी दीर्घ आता है अच्छा मैंने पूछ लिया
बहन ऐसा कहते हैं कि जब जब पानी का ग्रहण करने का तब तो ठंडा
ने उनको ऐसे लिया हाथ में पानी लेके देखो पानी ग्रहण कहते हैं ना, शादी करते हैं उसे पानी ग्रहण कहते हैं। देखो आगे लिखा है, शादी में क्या होता है, वो वधू और वर के हाथ रखते हैं ना, फिर एक हाथ देते हैं ना, एक में के हाथ पकड़ते हैं, तो उसको कहेंगे पानी ग्रहण यानी शादी करना। पानी यानी हाथ, देखो पानी ग्रहण धूल भी नहीं है, सुन अज्ञानी की भाषा है, पानी ग्रहण किया। यहाँ तो प्रभु कहते सुन तो सही, परद्रव्य को आत्मा कभी ग्रहण कर सकता नहीं और कभी छोड़ता नहीं, ग्रहण किया नहीं तो छोड़े कहाँ, और वो पानी यानी हाथ कहाँ आत्मा का है, समझ में आती है बात, थोड़ी सूक्ष्म बात है परंतु वास्तविक यथार्थ है। जैसा सत है पर्याय में सत है, द्रव्य गुण सत है, ऐसा ज्ञान करें। देखो जो सत है, वस्तु जैसी है वैसी उसको पहले में पहले जानना चाहिए, तो ऐसा ज्ञान करें। ये द्रव्य गुण तो सत है ही है, पर्याय भी सत है, तो ऐसी यथार्थ श्रद्धा करें। पहले ज्ञान करें, ऐसी यथार्थ श्रद्धा करें, और यथार्थ श्रद्धा करें तो वाणी में ऐसी कथन शैली आए, समझ में आया। परंतु जिस प्रकार पदार्थ सत है उस प्रकार नहीं मानकर, भिन्न ज्ञान और भिन्न श्रद्धा हो, भिन्न यानी अलग जाति की विपरीत हो, तो उसकी प्ररूपना भी भिन्न हो जाएगी, समझ में आया। अरे ऐसी बात, व्रत करो उपवास करो पड़िमा ले लो, पड़िमा ने वो प्रतिमा लेते ना जो पंचम गुणस्थान वर्ती के होती है, परंतु ये बाह्य में कुछ व्रत आदि अंगीकार किए, कुछ क्रियाकलाप चालू किया तो उसको लगता है मैंने प्रतिमा ग्रहण की। साधुपना, पंच महाव्रत धारण करो, ये सब आसान था, उसमें तो रखड़ना है, वह राग है। रखड़ना क्यों कहा, ये तो राग है परंतु अभी मिथ्या तो वहां साबुत है ना, वो राग करने से मुझे मोक्ष होगा ये मुझे फलदायी है ऐसी मान्यता है, जो हेय मानना था उसी को उपादेय माना है और उसी को मोक्ष का मार्ग मान लिया।
अब ऐसा है वो राग करता है तो उसको बंद होता है, अबंध दर्शन नहीं होती इसलिए रखड़ता है,
और करने जैसा माना ना उसने, मूल में मिथ्या तो पड़ा है, सम्य दर्शन होने के बाद भी राग होता है, अभी बाकी है ना, मुनि अवस्था में भी है राग बाकी, परंतु उनको करने जैसा नहीं मानते। तो राग देरी पर्याय में है ऐसा जानकर, द्रव्य का आश्रय लेकर उसे छोड़ना, यह बात करते हैं, यानी ये मार्ग है। जिसे ग्रहण नहीं किया उसे छोड़ना है कहाँ, कर्म ग्रहण किए ही नहीं, शरीर ग्रहण किया ही नहीं, ये तो जुदा का जुदा ही है, वो परद्रव्य है, कभी एक में हुआ ही नहीं है, ये कह रहे। कुटुंब ग्रहण किया ही नहीं, पैसा ग्रहण किया ही नहीं, पैसा किसने ग्रहण किया है, पैसा ग्रहण किया है, ग्रहण किया हो तो जड़ पदार्थ यानी जड़ पदार्थ जो है वो पर्याय में आ जाए। क्या कहते हैं, यदि हम मानेंगे कि आत्मा ने उसको ग्रहण किया तो उसको पर्याय में आ गए ऐसा मानना पड़ेगा। प्रश्न, दुनिया, समाधान, दुनिया दुनिया में रखड़ती है, आहा हा, पैसा आत्मा ने ग्रहण किया ही नहीं तो पैसा का त्याग करना यह बात रहती नहीं, उसने राग ग्रहण किया है उसी का ग्रहण करने वाला है। देखो भाषा तो देखो, हो हो, अरे रे, पर्याय में पुण्य और पाप, दया दान व्रत भक्ति के परिणाम होते हैं, उन्हें आत्मा ने पर्याय में ग्रहण किए हैं और उसी का त्याग करने वाला है। देखो जो राग ग्रहण किया है उसका त्याग करने वाला है, पर चीज को ग्रहण की नहीं तो त्याग करना आत्मा में है कहाँ। आहा, सूक्ष्म बात है प्रभु, तेरा मार्ग बहुत सूक्ष्म है प्रभु, भगवंत हो नाथ, आहा हा, आनंद का सागर प्रभु परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर पर्याय में विकार ग्रहण करने वाला और छोड़ने वाला वह खुद है। क्या कहा, कैसा परमेश्वर, विकार को करने वाला और छोड़ने वाला भी स्वयं है, कर्म जाए तो राग टले ऐसा है नहीं। समझ में आया? पर्याय में तूने तू दीर्घ राग का ग्रहण किया है तो उसी का त्याग करने वाला है। हाँ हाँ हाँ, जबरदस्त फेरफार, फेरफार नहीं उससे उल्टा मान लिया अज्ञानी ने। और ऐसी प्ररूपना चल रही है बाहर में कि जो स्वयं ही नहीं जान रहे हो तो क्या बताएंगे दुनिया को। अज्ञानी तो माने कि धंधा छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, लेकिन ग्रहण कब किया था तो छोड़ दिया। पर के त्याग ग्रहण से तो भगवान शून्य है। मुमुक्षु कहते ममता की, पूज्य गुरुदेश, ममता तो राग है, राग को ग्रहण किया है तो राग को छोड़ना है, जो ग्रहण किया नहीं उसे छोड़ना है। कहा भैया इसी बात है, यानी वो जो ममता है वो ममता को छोड़ना है, राग को ग्रहण किया है तो राग को छोड़ना है। पैसे को तूने ग्रहण ही नहीं किया तो पैसा कहाँ छोड़ना है, उसकी ममता है उसको छोड़ना है। भगवान आहा हा, जिनेश्वर तीन लोक के नाथ वीतराग परमात्मा की वाणी का प्रवाह ऐसा है, यह प्रवचन सार है। आहा हा, आत्मा में पर्याय में विकार है ही नहीं ऐसा मानना भी झूठ है, और विकार है वह कर्म परद्रव्य से हुआ है यह भी झूठ है। क्या कहा पहले में, कौन क्या मानते हैं आत्मा में पर्याय विकार है ही नहीं, तो वो तो झूठी मान्यता है। और विकार है वो कर्म के कारण हुआ, परद्रव्य से हुआ, ये भी झूठी मान्यता है। मैंने राग किया तो मैंने कर्म को ग्रहण किया, राग छोड़ा तो मैंने कर्म को छोड़ा, ऐसी बात है नहीं। यानी हमने राग को ग्रहण किया कर्म को नहीं, राग को छोड़ना है कर्म को नहीं। वो कर्म तो परद्रव्य, उसमें जीव का कुछ नहीं चलता अधिकार। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म भाई, एक भाव भी जैसे है वैसे यथार्थ समझे तो प्रत्येक भाव की यथार्थता लक्ष्य में आवे। क्या कहा? इसको कहेंगे भाव भाषण। एक भाव भी जैसे है वैसे यथार्थ समझे, ये गाथाओं में जो अलग अलग बताए बात बताई जाती है उसको यथार्थता से अगर वो समझोगे तो प्रत्येक भाव की यथार्थता लक्ष्य में आ जाए। एक भाव भी यथार्थ तो न समझे तो प्रत्येक भाव में विपरीतता आ जाती है। देखो जब हम सात तत्वों का अभ्यास करते हैं वही बताते हैं, एक तत्व के बारे में जिसकी भूल है मान्यता विपरीत है, उसकी सातों तत्वों के बारे में मिथ्या मान्यता चलती है। ऐसे यहाँ के एक भाव भी यथार्थ नहीं समझा, विपरीतता है, तो सभी भावों को समझने के लिए उसकी विपरीतता होती
है। वो कुम्हार जो घड़ा रखता है,
हाँ घड़ा
एक अंधा रखा तो सभी अंधेरा,
ऐसा नहीं सुना? नहीं, कुम्हार जो घड़े बनाता है तो उसकी रास बनाता है तो नीचे के घड़े उंधे ऐसे मूल नीचे करके रखते हैं तो उसके ऊपर पूरी रास वैसे ही हो जाती है ना, देखा है ना? आप घर में नहीं कहते कटोरी रखते ना एक के ऊपर ऐसे वो उंधा रखा तो ऊपर के भी उंधे ही रखते, कि एक ऐसा ऐसा रखते हैं कैसा रखते हैं, सब ऐसे ऐसे रखेंगे ना। देखो एक कहता है ईश्वर राग करवाता है, राग किया तो उसे ईश्वर को सौंप दिया, उसकी ना कहते हैं। वो तो गीता में भी कहा है मैं किसी का करता हूँ नहीं, एक श्लोक है किसी का करता मैं नहीं, उसे नहीं ले अर्पण करो, वह गाता देखे। आहा, यहाँ भगवान तीन लोक के नाथ ऐसा कहते हैं, राग को पर्याय में ग्रहण किया है उसी का त्याग करने वाला वह है। हाँ, पर्याय में जो दया दान व्रत आदि का राग है वह तो दुख है, भगवान तो आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप की दृष्टि करने से, दृष्टि करने नहीं उसी में मैंपने की मान्यता हो जानी चाहिए, यानी क्या उसका आश्रय करने से राग का त्याग हो जाता है। राग का त्याग करने के लिए, नहीं तो राग को ही देखते रहे तो तीन काल में राग का त्याग नहीं हो सकता। ख्याल में आई ना बात? स्वभाव का जिसमें राग है नहीं उसका लक्ष्य करने से राग वो उत्पन्न नहीं होगा, तो उसको कहेंगे राग का त्याग किया। समझ में आया? हाँ हाँ। समय सार में वहां तक कहा कि राग का छोड़ना, राग का आत्मा ने त्याग किया वह नाम मात्र कथन है, ऐसा पाठ है। क्यों? पर्याय में राग है परंतु त्रिकाली ज्ञायक भाव का आश्रय लिया तो राग उत्पन्न होता नहीं है, उसे राग का त्याग किया ऐसा नाम मात्र कथन है। क्या कहा? देखो ये अपेक्षा समझना बराबर, दोबारा बता रहे कि राग का त्याग किया वह नाम मात्र कथन है। समय सार की 34वीं गाथा में कहा है, यह प्रवचन सार है क्योंकि यहाँ ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान प्रधान कथन होता है। प्रभु पर के त्याग की बात तो है नहीं, ओहो हो, परंतु राग दयादान व्रत काम क्रोध आदि अशुभ भाव या शुभ भाव उसका मैंने त्याग किया वह भी कथन मात्र है, व्यवहार है, निश्चय नहीं। क्यों? कि ज्ञायक स्वरूप पूर्णानंद भगवान पूर्णानंद का आश्रय लेते हैं तो राग की उत्पत्ति होती नहीं, अपने पर्याय में होती थी वह होती नहीं। समझ में आया? उसे राग त्याग किया ऐसा व्यवहार कथन है, उसे राग का चाहिए। समझ में आया? व्यवहार क्यों किया? उत्पन्न नहीं होने को त्याग किया ऐसा कहते हैं। उत्पन्न ही नहीं हुआ है, कब? स्वभाव का आश्रय लेने पर। यहाँ तो अशुद्ध निश्चय से पेज नंबर 93, यहाँ तो अशुद्ध निश्चय से त्याग ग्रहण कहा है, यानी राग का त्याग राग का ग्रहण जो कहा है वो कैसे? अशुद्ध निश्चय से। अरे क्या शैली, दिगंबर संतों की शैली, ओहो हो, गंभीरता, अंदर गहरा रहस्य बहुत भरा है। आहा हा, उसी का त्याग करने वाला है, इसमें आया ना। और समय सार 34वीं गाथा में कहते हैं राग का त्याग करना नाम मात्र है परंतु अशुद्ध नय से अपने में है। अपना द्रव्य आत्मा आनंद स्वरूप भगवान का आश्रय लेते हैं, यानी कैसा है अपना भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है उसका आश्रय लेते हैं तो इतना राग उत्पन्न नहीं होता, उसे राग का त्याग किया ऐसा कहने में आता है। जैसे आश्रय लिया तो अनंतानुबंधी उत्पन्न नहीं होगा, इतना राग का त्याग हुआ ना, पूरा नहीं वितराग हुआ अभी, कितना याद रखना। हा हा, संसार की सभी चीज को याद रखता है। इस भाव से आई, इस भाव से बेची, इस भाव में आती है, 1000 चीज दुकान में हो तो भी याद रखता है। जिसका जो व्यवसाय है, जिसके जहाँ रुचि है, वो सब बातें याद रख। तारा भी इनको कैसे याद आता है, कौन सी चीज़ कैसे बनानी है, पापड़ बनाना है और क्या लड्डू बनाना है और क्या क्या बनाना है, हा? वो पूछना नहीं पड़ता है। क्यों? उसके लिए पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ता। कॉलेज में हमारी दुकान थी, हजारों चीज, बड़ी दुकान थी, अभी तो बहुत बड़ी हो गई, ये तो हम बैठते थे तब की बात है, अभी तो बड़ी दुकान है, 40 लाख रुपए है, 40 लाख की कमाई है। हमारी वही दुकान थी, आहा हा, इतने पैसे कमाए और इतने छोड़े, अथवा इस भाव में लाया था, इतना बिक गया है, इतना बाकी है, नया भाव यह है, ऐसे तीन बात याद रहती। मुझे इतना याद नहीं रहता, दुकान पर मैं व्यापार करता था, 5 साल किया, 17 वर्ष से 22 वर्ष की उम्र तक 5 साल दुकान चलाई, लेकिन हमको इतना रस नहीं था, दूसरे को बहुत रस था। इसका यह भाव है, इसका यह भाव है, इलायची की 2 बोरी थी, उसमें से 1.5 बिक गया, आधी बाकी है, इस भाव में आई थी, अभी इलायची का यह भाव चल रहा है, ऐसे तीनों बातें याद रहती, इस आत्मा की खबर नहीं। यानी इसमें ही पूरी रुचि, उसमें ही पूरा दिमाग चलता है उनका, परंतु आत्मा है इस बात का भी विश्वास नहीं है। आत्मा में राग कितना हुआ और कितना गया इसकी खबर नहीं। और तिकाली आत्मा में राग है ही नहीं, पर्याय में है, तो पर्याय में कितना गया और कितना रहा, इन तीन बातों का ज्ञान नहीं। हाँ भगवान यहाँ तो बात भर कही। कुनकुंदाचार्य कहते हैं तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कहा। क्या कहा कुनकुंदाचार्य ने? मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कहा, निर्दिष्टम कहा ना, भगवान ने बताया और गणधरों को बताया। अरहंत सर्वज्ञ देव गणधरों को ऐसा कहते हैं, गणधर आदि मुनियों को ऐसा कहते हैं। यह सबने पढ़ा नहीं था फिर भी अज्ञानी कहते हैं। विकार आत्मा से होता है, कर्म से नहीं? हमने कहा बिल्कुल बिलुल हुआ है, बिल्कुल चाहिए। बीच वाला लू निकाल देना और ल और कु लिखना। नीचे लिखा है ऐसा, परद्रव्य से बिल्कुल नहीं। तो कहने लगे पर कर्म से नहीं हो तो राग स्वभाव हो जाएगा, ऐसी दलील सामने वाले करते। 94 पेज क्या कहा उन्होंने, यानी सामने वाले जो विरोध करते हैं, पहले में कर्म से नहीं वो मानने को तैयार नहीं, और कहते कि कर्म से नहीं हुआ तो राग स्वभाव हो जाएगा, परंतु पर्याय का विभाव स्वभाव है। ये विभाव करने का भी आत्मा का, देखो दो द्रव्यों में विभाव हो सकता है, कौन से दो द्रव्य? जीव और पुद्गल दोनों में, परंतु वो अपने से होते, उनके परद्रव्य नहीं कराते हैं उनको। जैसे उसको नियत ने और अनियत ने ऐसे दो नहीं आते, नियत ने वो कायमी स्वभाव है तो वो नियत नियत स्वभाव, अनियत न ऐसे अनियत स्वभाव किसको कहेंगे? जैसे पानी है उसका स्वभाव क्या है तो शीतल, परंतु हमने अभी गैस पर रखे तो गर्म हो गया, उबलने लगा, क्यों? पर्याय में गर्म होने का उसका अनियत स्वभाव है। ऐसे आत्मा का स्वभाव क्या है? शांतता, शांति है, निराकुलता उसका स्वभाव है, आनंद उसका स्वभाव है, पर अभी पर्याय में उबल रहा है ना, दुखी हो रहा है, क्यों? वो पर्याय का ऐसा स्वभाव है, अनियत स्वभाव कहेंगे उसको, वो विकार है, वो कायमी स्वभाव नहीं है, उसको भी विभाव स्वभाव कहा। वो विभाव रूप होने का स्वभाव पड़ा है आत्मा, या आत्मा अपनी योग्यता से विभाव रूप हो रहा है, कर्म उसको विभाव रूप नहीं कर रहा है, ये कह रहे। क्या कहते देखो यहाँ पर, राग स्वभाव हो जाए परंतु पर्याय का विभाव स्वभाव है। 94 पेज पहली लाइन समझ में आया। संवत 2013 में इसरे में बड़ी चर्चा हुई थी, 22 वर्ष हुए। हाँ क्या बात कही है। उस समय उनके साथ वो गणेश प्रसाद जी वर्णी जी थे, उनके साथ इनकी चर्चा हुई थी। उसी का त्याग करने वाला है, यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय न है। देखो क्या कहते हैं, शुद्ध द्रव्य यानी अपनी पर्याय अपने से है, यह शुद्ध द्रव्य है ऐसा कहते हैं। किसको शुद्ध द्रव्य कहा? शुद्ध पर्याय वाले को नहीं, स्वभाव को नहीं। फिर से देखो, शुद्ध द्रव्य किसको कहा? अपनी पर्याय अपने से है, यह शुद्ध द्रव्य है। अपनी पर्याय ने अभी राग की पर्याय, वही तो कह रहे, वही तो बराबर पकड़ो, इसे मैं बार बार दोबारा पूछ रही हूँ। शुद्ध द्रव्य किसके? आत्मा की पर्याय आत्मा में, आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय आत्मा का है, वो पुद्गल से उसका कोई संबंध नहीं है, पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय पुद्गल के, यही प्रत्येक द्रव्य की शुद्धता है। मैंने पहले ही बताया था ये शुद्ध इसको, और यहाँ तो बार बार बताया है कि ये राग द्वेष के परिणाम कौन से, शुभ भी अशुभ भी सभी, पुण्य पाप के सभी परिणाम आत्मा के अपने पर्याय में हो रहे, आत्मा से हो रही है, उसको आत्मा के कहना, ये शुद्ध द्रव्य है। शुद्ध क्यों? क्योंकि परद्रव्य का उसमें प्रवेश नहीं है। फिर से पढ़ो देखो, सेकंड लाइन है ना, नए पैराग्राफ की। शुद्ध द्रव्य यानी अपनी पर्याय अपने से है, यह शुद्ध द्रव्य है। वो पर्याय स्वभाव पर्याय के विभाव पर्याय उसे कोई मतलब नहीं, वो अपनी अपने से है। जीव की पर्याय जीव से है, यह शुद्ध द्रव्य हुआ। ऐसा कहते हैं। शुद्ध नाम स्व है, पर की अपेक्षा लेना वह अशुद्ध नहीं, व्यवहार नहीं है। कर्म से हुए कहेंगे तो व्यवहार नहीं हो गया। तो शुद्ध द्रव्य देखो, विकार सहित वाले को बताया था मैंने, पहले भी यहाँ लिखा हुआ था 76 पर भी बात आई थी, निकालो जरा, पहले रेफरेंस लिख के रखा है मैंने 76। देखो लास्ट पैराग्राफ, भावबंध बताए ना, मिलना आपको सबको भावबंध। देखो एकलोज बंध छे एम देखू मानू, कारण के निश्चय नो एनो विषय शुद्ध द्रव्य छे। शुद्ध द्रव्य एटले वस्तु द्रव्य एम नहीं, भावबंध ते शुद्ध द्रव्य छे। अहीं कर्मनो संबंध ते अशुद्ध द्रव्यना कथननी व्याख्या छे। अशुद्ध कब कहेंगे, कर्म से संबंध बताएंगे वो अशुद्ध कथन हुआ, यानी असद्भूत व्यवहार नहीं की बात करेंगे तो अशुद्ध का कथन, अशुद्ध द्रव्य हुआ, वो झूठा व्यवहार ने व्याख्या छे, एमां नथी। बाकी तो वो व्यवहार की बात है, यानी अभी भी वही बात है। शुद्ध द्रव्य किसको कहा, जीव की पर्याय, भले वो विभाव है विकार है, वो जीव की कहना, वो है शुद्ध द्रव्य का कथन। ख्याल में आई, पर्याय में शुद्ध होगा उसकी बात यहाँ नहीं लेनी है। चौथी लाइन, यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नहीं, इसको निश्चय नहीं कहा था। इस पर हमने चर्चा भी की थी, इसको उपादेय रूप क्यों कहा, क्योंकि पहले इसका स्वीकार करेंगे बाद में द्रव्य गुण का आश्रय लेंगे तब इसको हम छोड़ा कह सकेंगे। ये बात हुई थी ना कल परसों, मूल ग्रंथ में नीचे फुट नोट दी है, वो हमने पढ़ी थी, दो बार पढ़ी थी। हाँ, निश्चय ने मात्र स्वद्रव्य के परिणाम को बतलाता है। निश्चय ने स्वाश्रित जो परिणाम है वो स्वाश्रित वो निश्चय, पराश्रित वो व्यवहार, यानी एक द्रव्य का उसी को कहना, उसी की पर्याय उसकी कहना, वो है निश्चय। कितने निश्चय न, यानी स्वाश्रित जो परिणाम है वह निश्चय स्वाश्रित है, व्यवहार पराश्रित है। निश्चय न सत्य न, अपना परिणाम अपने से है ऐसा बताते हैं। क्या कहा, वो बोले अशुद्ध पर्याय हो उसकी बात नहीं है, अपनी पर्याय अपने से होती है कहना वो निश्चय, इसलिए उसे शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा। देखा, शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा है, अपनी पर्याय अपने से है यह निश्चय है, यह शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा है, ऐसा याद कहाँ रहता है भगवान तेरी। आहा, पर्याय में दोष न हो तो आनंद होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो आनंद स्वरूप प्रभु है। पर्याय में अगर राग और दुख दोष न हो तो आनंद होना चाहिए, और ये दुख और आनंद भी जो है वो पर्याय में है। अनुभव हमेशा पर्याय का होता है, द्रव्य का नहीं। द्रव्य का हो तो आनंद स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, उसका तो अनुभव होना चाहिए था, पर पर्याय है ना, तो पर्याय का वेदक कहने में आता है, पर्याय को भोगता है, कहो पर्याय का वेदन होता है। आनंद का तो अभाव है, उसके स्थान में राग का दुख है। किसका दुख है, संयोग का नहीं कहा, ये गर्मी है उसका नहीं दुख कहा। राग है ना, ये शरीर के प्रति राग है, और ये गर्मी होती तो उसके प्रति द्वेष हो रहा है। समझ में आया, सम्यक दृष्टि धर्मी ज्ञानी को भी राग की हयाती है, यानी अस्थि है, उसके भी पर्याय में राग है। हयाती ना हो तो पूर्ण आनंद होना चाहिए, पूर्ण आनंद है नहीं तो इतना दुख भी साथ में है। थोड़ा आनंद है और थोड़ा दुख भी है, कल बात आई थी ना, मिश्र परिणाम है वो तो। ऐसी बात गणधरों और अरहंतों ने कही है। कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं कि मैं कहता हूँ, आह हा, सूक्ष्म बात है भाई, आदमी को कहाँ एकांत और मिथ्यात्व शल्य रह जाता है उसकी खबर नहीं। क्या कहते हैं, ये एकांतवाद जिसको कहेंगे, किसको कहते हैं एकांत, सर्वथा एक ही को मान लेना, उसको कहेंगे एकांत। और ये जिन धर्म ने हमारी बात कैसी है, जिनवानी कैसी है, स्यादवाद, यानी वो कथनचित यानी किसी अपेक्षा से जो वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा बताया जाता है। तो कहते हैं मिथ्यात्व तो शल्य रह जाते, ये शल्य का है, इसको शल्य किसको कहते हैं मालूम है, शल्य ने क्या काटा, काटा कोई अंदर चुभ जाए, मान लेते कांच गई, कांटा गया, कोई गंदी गई, तो क्या करते हम, पट्टी बांध देते, पहले उसको निकालेंगे, नहीं तो क्या होगा, उसका सेप्टिक बन जाएगा। ऐसे मिथ्यात्व शल्य है, वो शल्य कायम रखा अंदर और ऊपर क्या किया, व्रतों की पट्टी लगा दी, तो मिथ्या तो पनपेगा कहते हैं। क्योंकि मान लिया ना कि हम व्रत कर रहे हैं, हम आगे बढ़े, तो मिथ्यात्व को दूर करने का कोई उपाय भी नहीं करेगा, यानी वो सही मान्यता है ही नहीं उसकी, गलत मान्यता के साथ व्रतादि करेगा और मानेगा क्या कि मैं मोक्ष मार्ग पर हूँ, मैंने प्रतिमा धारण किए, मैं अभी पांचवें गुणस्थान वाला हूँ ऐसा मानता है, मैंने व्रतादि अंगीकार किया अभी मैं मुनि हो गया ऐसा मानता है, यही तो उसकी भूल हो रही है, क्योंकि मिथ्या तो शल्य अंदर बाकी है उसका, है ना, परंतु उसकी उसे खबर भी नहीं है। ग्यारह अंग का पाठी मिथ्यात्व के शल्य में रह जाता है, समझ में आया। वो आता है ना ग्यारह अंग नौ पूर्व का पाठी भी हो सकता है कि उसका मिथ्यात्व रह जाए। कहते हैं यह शुद्ध द्रव्य का कथन है, क्या अपनी पर्याय अपने से है, यह स्व आश्रित शुद्ध द्रव्य का कथन है। कौन सी 189 गाथा है ना, गाथा 189। बाद में ये याद आता है, मगर कौन सी गाथा में गाथा नंबर नहीं याद आता। राग है तो अशुद्ध परंतु अपने से होता है, यह स्वद्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध द्रव्य का कथन है। पर से होता है ऐसा अशुद्ध द्रव्य का व्यवहार का कथन है। पर से होता है ये कथन कैसा है, व्यवहार कथन है, अशुद्ध कथन है, अशुद्ध द्रव्य का कथन है। और व्यवहार ने परद्रव्य के परिणाम को आत्म परिणाम बतलाता है। विकार परिणाम जीव का है, उसे व्यवहार ने कर्म का बतलाते हैं, इसलिए उसे अशुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा है। यह अशुद्ध द्रव्य का कथन है, कर्म से विकार होता है ऐसा कहा, वह अशुद्ध द्रव्य का व्यवहार ने का कथन है। क्योंकि देखो जिनवाणी में ऐसा कथन आता है, परंतु वो कैसा व्यवहार कथन है, व्यवहार ने का कथन है, निमित्त का ज्ञान कराने वाला कथन है। यह वाजबीन, वाजबीन वो सत्य नहीं है, यह वाजबीन है नहीं। हाँ समझ में आया, ऐसा समझने को बनिए को कहाँ फुर्सत है, वो फूल ह्रस्व करना फुर्सत। धंधे के आड़ में फुर्सत मिले नहीं, वो तो कहता भी है ना कि मरने को भी फुर्सत नहीं है, ये फुर्सत वाले मरते हो गए ऐसा लगता है। सारा दिन पाप, स्त्री पुत्र धंधे में पाप में लीन रहता है, पुण्य है वह तेरी चीज है और तेरे से हुई है, पाप भी तेरे से, तेरे कारण तेरे में हुआ है, और तेरे में हो तो अपनी सत्ता है, उसे ग्रहण किया है, यानी जीव ने उस ग्राहक को ग्रहण किया है, यानी उसको उत्पन्न किया है, तो स्वद्रव्य का आनंद का आश्रय लेकर छोड़ दे, यानी स्वद्रव्य का आश्रय का आश्रय लेगा तो वो छूट जाएगा, समझ में आया। परद्रव्य तो ग्रहण किया ही नहीं, आठ कर्म है उसे तो आत्मा ने ग्रहण किया ही नहीं, उसे छोड़ना, आत्मा आठ कर्म छोड़े नाश करना ऐसा है ही नहीं, ऐसा सत्य स्वरूप है। बहने को यह सब सूक्ष्म पड़ेगा, आत्मा है ना प्रभु, तुम बहने हो ही कहाँ, क्या कहते हैं, वो स्त्री तो पर्याय है, आत्मा को कहाँ वो स्त्री और पुरुष बना होता है, अंदर भगवंत है ना। हाँ हाँ, उसकी पर्याय में प्रभु तुझे राग है ना, राग तेरा है, तेरा ग्रहण त्याग है, यह शुद्ध द्रव्य का कथन है। शुद्ध नाम स्वद्रव्य के आश्रय से कहा इसलिए शुद्ध, शुद्ध नाम त्रिकाली शुद्ध स्वभाव की बात नहीं, अपने आश्रय से स्वद्रव्य के आश्रय से है, यह शुद्ध द्रव्य का कथन है। बारंबार क्यों बोलते हैं, क्योंकि छूट जाती है, ये ख्याल में नहीं आती। जैसे हमने आपको पूछा शुद्ध द्रव्य नहीं वो पर्याय शुद्ध होगी, क्योंकि वही बात अपने इतने अंदर तक घुस गई है कि ये शुद्धता ख्याल में नहीं आती। अपने आश्रय से स्वद्रव्य के आश्रय से है, यह शुद्ध द्रव्य का कथन है। है कहो समझ में आया कि नहीं। बेंगलोर है ना, वहाँ एक मुमुक्ष का व्यापार है, 2 करोड़ है, उसने 8 लाख देकर मंदिर बनाया। 8 लाख उसने डाले और 4 लाख दूसरे ने डाले, 12 लाख का मंदिर हुआ। अभी तो 15 लाख का है, 12 लाख तो उसने दिया था, बाद में भी विशेष देकर 15 लाख का मंदिर किया। कल वह आने वाला है, बहुत प्रेमी है, श्वेतांबर है, छोड़ दिया, श्वेतांबर छोड़ दिया तो उसे उनके समाज से बाहर कर दिया। अरे रे दुनिया क्या करती, वो भंडारी है ना, बभूतमल जी भंडारी, उनके बारे में बोल रहे। वो अपने शिविर में रमेश भाई भंडारी आते, पहले लाइन में बैठते हमेशा देवलाली में, उनके पिताजी बभूतमल भंडारी, उन्होंने ये तो 1975 में वो उसकी पंचकल्याणक हुआ था उनका, जब हम यात्रा में थे ना, तो ऐसे यात्रा के दौरान 8 दिन हमारा बेंगलोर में वो मुकाम था, वो अटेंड किया था हमने पूरा पंचकल्याणक। वो दीक्षा कल्याणक का प्रसंग मुझे अभी भी याद है, गुरुदेव ने प्रवचन किया था तब,
गुरुदेव थे उस समय। हाँ गुरुदेव थे।
हाँ 8 दिन उनके प्रवचनों का लाभ मिला हमको, 8 दिन। हाँ वो नियर है, वो स्टेशन के नजदीक है, चिकपेट कहते, चिकपेट का मंदिर। उनके बारे में हमेशा आता है ना कि उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, वो कुछ फिर बाद में ऐसे कोई गवर्नमेंट का रूल ऐसा बदल गया कि उनका पैसा जो बढ़ गया। वो तो उनके भाई अभी भी, वो तो सानकवासी में भी है, ये रमेश भाई इधर आए। आप जैसे लेकिन आपका ये पुरुषार्थ है, क्योंकि आपने सही, भले शुरू में ऐसा लगता है ना कि क्या हमने अभी तक माना वो खोटा कैसा, यानी थोड़ा तो विरोध अंदर से लगता है, फिर भी आप लोगों ने उसको सही समझा, सही पकड़ा, तभी तो आपने दिगंबर अपना है ना। हाँ सबको अभी दिगंबर में भी है ना, अभी दिगंबर पंथ में तो सही मान्यता होनी चाहिए, परंतु वो भी ऐसे गलत रास्ते पर कितने लोग हैं, और वो तो पक्का विरोध करते हैं, वो तो कांजी स्वामी का विरोध कर रहे जो सत्य बात बता रहे, क्या करें, ऐसी होनहार है वैसे हो जाते हैं। आप लोगों की अच्छी होनहार है, परंतु अकेले होनहार से नहीं होता, पुरुषार्थ भी आपका हुआ। हाँ स्वाध्याय करना, उसको समझना और सही को सही कहना, ये भी कुछ। हाँ हाँ नहीं तो क्या है, हमारे घर वाले सब करते हैं और उनके विरुद्ध जाकर ये सही मान्यता अपना एक कठिन काम है, कि अकेले हम ये मानेंगे, बाकी हमको कोई सब गलत गलत कहेंगे, मगर उतना तो अंदर धाड़स धैर्य चाहिए, उतना पुरुषार्थ चाहिए।
यानी आपने 5 सब भाई चाहिए बताया, पुरुषार्थ भी चाहिए तो निमित्त भी तो चाहिए कि नहीं।
बिल्कुल होता ही है। ये गुरुदेव जैसा भी निमित्त भी मिला, निमित्त तब कहेंगे उनका हमने तत्व ज्ञान समझा तो उनको हम निमित्त कहेंगे,
यहाँ कार्य हुआ तो उसको निमित्त कहेंगे।
वही तो
अभी आप लोगों ने पुरुषार्थ किया, निमित्त आप मिले तो उसके कारण उनका भी कार्य हुआ, ऐसा भी कह सकेंगे।
आपने उनको सिद्धांत प्रवेशिका सिखाई ऐसा हम कहेंगे, ठोक बजा कर। वही केवल सुनने से नहीं होता है, ये बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में वो हैमरिंग चाहिए, क्योंकि वो पहली मान्यता इतनी डीप डाउन होती है। हाँ, वो कुछ गजब का काम होता है शुरुआत का वाला। बाद में एक बार आपको ये सत्य बात है ये ख्याल में आए, तो आप स्वयं ही दौड़ दौड़ कर प्रवचन सुनेंगे, अन्य अन्य प्रवचनकारों को भी सुनेंगे। तो बेसिक में जो फंडामेंटल्स है वो बहुत था, वो पक्के होना चाहिए।
लेकिन आजकल क्या हो गया है, घर में बैठे बैठे सुनने को मिलता है।
नहीं, मगर वो तो उसमें सही गलत का अगर पहचान नहीं हो तो क्या होगा, प्रश्न भी नहीं होते। और वो जो अभी मैं शुद्ध द्रव्य कह रही हूँ, तो चेहरे पर दिखता है ना, तो हमने आशा को मैंने क्यों टोका कि कोई तो ऐसे समझ में आता है कि मैं क्वेश्चन करूँ तो प्रश्न से पता चलता है कि इनकी क्या मान्यता। यानी हमने सुना है, परंतु वो सुनकर वो सही अंदर तक बात बैठी कि नहीं, ये तो पता चलता है ना। ये तो सामने प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष तत्काल उसका निराकरण में समाधान भी हो जाता है।
मुझे और कुछ कहना है।
हाँ, बोलो बोलो।
पहले के जमाने में ऑनलाइन नहीं थे लेक्चर्स, आज के तारीख में ऑनलाइन मिलते तो कोई आता ही नहीं है, घर में बैठे बैठे सुनता है।
अरे घर में बैठ के सुने, वो तो कहाँ किसी का फोन आया, बेल बजी, यहाँ कुछ चल रहा है, काम चल रहा है। हमने ऐसे भी देखे वहाँ से रसोई करते करते फिर सुन रहे, जो कुछ अन्य काम करते करते सुन जाए सुनेंगे, मगर वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, वो अलग ही बात हो जाए।
अपनी प्रेजेंटी लगाने के लिए नाम लिख देते, बाकी आगे क्या करते भगवान जाने।
जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नाम सदा देत हो। सुशील अभी
नमो आर्यं दावनमो सिद्धं नमो आर्यं दावनमो सिद्धं नमो आर्यं।